श्री विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण का नाम है ध्यानदीप प्रकरण। ध्यानदीप प्रकरण के 61वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 62वें श्लोक की चर्चा आज प्रारंभ होनी है। 55वें श्लोक से एक अवांतर प्रकरण यहां पर प्रारंभ हुआ। सभी वेदांत के आचार्य सगुण ब्रह्म को उपास्य तो मानते ही हैं, सगुण ब्रह्म विषयक उपासना होती है, यह अविवादित है। इसके विषय में किसी में कोई विवाद नहीं है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना कुछ वेदांति कहते हैं होती है, कुछ कहते हैं नहीं होती है। तो जो निर्गुण को उपास्य नहीं मानना चाहते वे निर्गुण को उपास्य मानने वाले के मत में उनके दृष्टि के अनुसार जो जो दोष आते हैं वे दोष बता रहे हैं, उसका समाधान निर्गुण को भी सगुण के तरह उपास्य मानने वाले विद्यारण्य स्वामी जी कर रहे हैं। विद्यारण्य स्वामी जी हैं सगुण के तरह निर्गुण को भी उपास्य होता है ये मानने वाले। तो ये सब चर्चा चली कि जो निर्गुण को उपास्य मानते हैं उनके मत में श्रुति विरोध होगा, क्योंकि केन श्रुति निर्गुण को उपास्य नहीं करके बता रही है। येन मनसा न मनुते येन अभुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यह श्रुति उपास्य में ब्रह्म तत्व का निराकरण करती है, यानी वास्तविक ब्रह्म स्वरूप उपास्य नहीं है ये बता रही है। और उस वास्तविक ब्रह्म स्वरूप को यानी निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को निर्विशेष को उपास्य मानेंगे तो उस श्रुति का विरोध होगा ना, ये दोष बताया। उसका समाधान करते हुए कहा कि केवल निर्गुण को उपास्य मानने वाले के मत में मात्र ये दोष आता है, श्रुति विरोध ऐसी बात नहीं। जो निर्गुण को वेद्य मानना चाहता है उनके मत में भी श्रुति विरोध नाम का दोष आएगा। वेद्य यानी ज्ञेय है, उसमें ज्ञेयत्व है। तो अन्य देव तद विदितात् यह श्रुति विदितत्व यानी वेद्यत्व का निषेध कर रही है। तब भी निर्गुण को आप वेद्य मान रहे हो तो जैसे नेदम यदिदम उपासते इस श्रुति का विरोध निर्गुण को उपास्य मानने वाले के पक्ष में आपको दिख रहा है, ऐसे हमें आप निर्गुण को वेद्य मान रहे हो तो उस पक्ष में इस श्रुति का विरोध प्रतीत हो रहा है। अन्य देव तद विदितात् इस श्रुति का, यदि इस श्रुति के अर्थ को अन्य देव तद विदितात् इस श्रुति के अर्थ को सुधार करके सामने रखना चाहेंगे जो निर्गुण को वेद्य मानना चाहते हैं वे लोग, कि ये कहेंगे कि आप अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इस श्रुति का अभिप्राय समझे नहीं विद्यारण्य स्वामी जी को, ये कहेंगे। वो श्रुति वेद्यत्व का निषेध नहीं कर रही है, अपितु ये बता रही है कि ब्रह्म विदित अविदित अन्यत्वेन वेद्य है। विदित यानी कार्य और अविदित यानी कारण और कार्य कारण अतिरिक्तत्वेन रूपेण ब्रह्म जानने योग्य है, वेद्य है। ये अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इस श्रुति वाक्य का अभिप्राय है। और ये वेद्यत्व का निषेध थोड़ा ही कर रहा है, ये कह रहा है कि उसे कार्य कारण से अतितत्वेन रूपे न जानो, उसमें कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता नहीं है, कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेष रूप से जानो। तो वेद्यत्व का तो निषेध वो वाक्य नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे मत में श्रुति विरोध नहीं है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तब हम कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि जैसा श्रुति जिस रूप से वेद्य बता रही है, कार्य कारण अति तत्वेन रूपेण निर्विशेष रूपेण वेद्य बता रही है, तो फिर निर्विशेष रूप से ही उस ब्रह्म की वृत्ति का आवर्तन, निर्विशेषाकार ब्रह्म वृत्ति, निर्विशेषाकार वृत्ति का आवर्तन रूप निर्विशेष ब्रह्म की उपासना बन जाएगी। उपासना की परिभाषा है वृत्ति का आवर्तन, वृत्ति की आवृत्ति। यदि निर्विशेषाकार ब्रह्म की एक बार वृत्ति बनेगी तो उसका आवर्तन भी हो सकता है, आवृत्ति भी हो सकती है, प्रवाह भी चला सकते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्माकार वृत्ति का आवर्तन रूप उपासना भी निर्विशेष की सिद्ध हो जाएगी। हमको तो श्रुति विरोध दिखाने में रुचि नहीं है आपके मत में, निर्विशेष की भी उपासना होती है ये सिद्ध करना हमारा उद्देश्य है, ये विद्यारण्य स्वामी जी कहता है। तो यदि वो निर्विशेष रूप से वेद्य है तो फिर निर्विशेष रूप से उपास्य भी होगा, वैसा जाना भी, जैसा जाना वैसा उसके आकार की वृत्ति का आवर्तन भी किया जाएगा। यदि ये कहते हैं कि ब्रह्म में वस्तुतः वेद्यत्व भी नहीं है, काल्पनिक है, आरोपित है, तो उपास्यत्व भी फिर आरोपित ही है, तो आरोपित उपास्यत्व मान करके उपासना करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आरोपित वेद्यत्व है ऐसे आरोपित ही उपास्यत्व भी हो जाएगा, और स्वतः वह उपास्यत्व और वेद्यत्व रूप विशेषता से भी रहित तो जैसा है ऐसा ही अपने स्वरूप से निश्चित रहेगा। यदि ये कहते हैं कि श्रुति कह रही है ब्रह्म वेद्य है करके निर्विशेष ब्रह्म, तो शब्द सामर्थ्यात श्रुति के, श्रुति में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति यानी वृत्ति विषयता रूप वेद्यता ब्रह्म में स्वीकार करते हैं हम, तो कहते हैं फिर वैसी ही उपासना भी वृत्ति व्याप्ति रूपा ही तो है, वृत्ति विषयता रूप ही तो है। यह है कि वेद्यता में एक बार वृत्ति बनने से भी वेद्यता आ जाती है, वृत्ति विषयता, और उपास्यता के लिए उस वृत्ति का आवर्तन करना होता है। तो आवर्त्यमान वृत्ति व्याप्ति का ही नाम उपासना हो जाएगा, और एक बार वृत्ति विषयता का नाम वेद्यता हो जाएगा, तो दोनों समान ही है, इसलिए निर्विशेष भी उपास्य हो सकता है। ये कहा, जो प्रमाण से सिद्ध दोष प्रमाण को आधार बना करके दिखाना चाहते थे वो सब तो निर्विशेष की उपासना पक्ष वालों ने हटा दिए। जो दोष दिख रहे थे, दोष दिए जा रहे थे निर्विशेष की उपासना पक्ष में, जो दोष सगुण की ही उपासना मानने वालों के द्वारा दिए जा रहे थे उनको हटा दिया गया, निराकरण किया गया। अब यदि निराधार दोष उपालंब कोई करेगा तो वो करना कहते हैं उचित नहीं होता। वो 62वें श्लोक में कहा जा रहा है। 62वें श्लोक के अवतरण में देखिए, युक्ति शून्य उपालंबस्तु त्वत्पक्षेपी समान इत्याह। तो युक्ति शून्य उपालंब, उपालंब शब्द का हिंदी में अर्थ होता है उलाहना। उलाहना देता है ना, हाँ मजाक। तो उलाहना मजाक करना जो युक्ति रहित है, अयुक्त है, अनुचित मजाक है, वो यदि निर्विशेष की उपासना मानने वाले की आप करते हो तो उस प्रकार की मजाक तो आपकी भी उड़ाई जा सकती है, उस प्रकार की उलाहना तो आपके पक्ष में भी दी जा सकती है, समान ही है। ये यहां पर कहा कि युक्ति शून्य उपालंबस्तु त्वत्पक्षेपी समान। तो युक्ति रहित, युक्ति शून्य का अर्थ है यानी अनुचित गलत जो हो उपालंब है, उलाहना है, निराधार उलाहना है, वह आपके पक्ष में भी समान है। कैसे? तो इस प्रकार ये 62वें श्लोक में बताया जा रहा है। काते भक्ति रूपास्तौ चेत् कस्ते द्वेष तदीरय माना भावोन वाच्योष्याम बहुश्रुतिषु दर्शनात्। तो अनुचित उपालंब उलाहना, निर्विशेष की उपासना मानने वाले के पक्ष में यदि सगुण की ही उपासना मानने वाले इस प्रकार की देते हैं, वो उलाहना बताई गई चेत तक, चेत एक पद है ना, वहां तक निर्गुण की उपासना पक्ष में अनुचित उलाहना की आशंका सगुण की उपासनावादी मानते हैं यदि, तो वही उलाहना बताई जा रही है वैसी ही सगुण पक्ष वाले के मत में भी। चेत यानी यदि सगुण उपासक ये कहना चाहेंगे निर्गुण उपासकों को कि ते उपास्तौ का भक्ति, ये उपालंब का स्वरूप है, उलाहना का स्वरूप है, ये प्रश्न करना चाहेंगे कि उपास्तो यानी निर्गुण उपास्तो, निर्गुण की उपासना में ते यानी निर्गुण उपासक की भक्ति का कैसी भक्ति है जो अनेकों दोषों से युक्त होने पर भी छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये कैसी आपकी भक्ति है, ऐसी हमारी निर्गुण उपासना के विषय में जो श्रद्धा है, भक्ति है, उस पर आप टीका टिप्पणी करोगे, उसकी मजाक उड़ाओगे, तो आपको भी हम पूछ सकते हैं कि ते कह दोष द्वेष तद ईरय। तो ते यानी आपके मन में निर्गुण की उपासना के विषय में इतना द्वेष क्यों है, ये बताओ हमारे बिना कारण ही, जबकि जो जो दोष आप बता रहे हो उन दोषों को तो आपके मत में भी हमने बताया समान ही है करके, श्रुति विरोध आदि सब दोष। तो वो सब आपके पक्ष में होते हुए भी हमारी निर्गुण उपासना की आप इस प्रकार मजाक करते हो, तो आपको भी हम पूछते हैं कि आपके मन में इतना द्वेष क्यों है निर्गुण उपासना के विषय में, इसका उत्तर दो हमारे इस प्रश्न का। तो इसका उत्तर क्यों द्वेष है, इसका उत्तर तो नहीं आता कुछ उनके मन में। यदि इसका उत्तर ये देंगे कि भाई कोई प्रमाण नहीं है निर्गुण की उपासना का प्रतिपादक, इसलिए हम अप्रामाणिक निर्गुण की उपासना होने से उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा यदि कहना चाहेंगे सगुण उपासक, तो कहते हैं निर्गुण उपासना का प्रतिपादक जो निर्दोष प्रमाण है श्रुति, वो एक वाक्य दो वाक्य नहीं अनेकों श्रुति वाक्य है जो निर्गुण की उपासना का प्रतिपादन कर रहा है, इसलिए अप्रामाणिक है निर्गुण उपासना ये कहना भी नहीं बन पाएगा। और प्रामाणिक निर्गुण उपासना की मजाक उड़ाना ये अनुचित है। ये यहां पर कह रहे हैं कि माना भावो न वाच्यो श्याम इत्यादि से, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार उत्तरार्ध का, उसे देखिए। ननु निर्गुण उपासने प्रमाणम नास्ति इति आशंक्य अनेकासु श्रुतिषु उपलभ्यमानत्वात् मैवम इत्याह मानाभाव इति। सगुण उपासक यदि ये कह शंका करते हैं कि निर्गुण उपासने प्रमाणम नास्ति, निर्गुण की उपासना विषयक कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा यदि सगुण उपासक कहते हैं तो ये कहते हैं सिद्धांति कि मा एवं यानी निर्गुण उपासना अप्रामाणिक है, प्रमाण रहित है, प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है, ऐसा मत कहो, मा एवं का अर्थ निकलेगा। क्यों? तो कहते हैं अनेक वेद वाक्य निर्गुण की उपासना के प्रतिपादक प्रमाण के रूप में विद्यमान है। एक उपनिषद वाक्य दो उपनिषद वाक्यों से नहीं, अनेकों उपनिषद वाक्य रूपी प्रमाण से निर्गुण उपासना प्रामाणिक सिद्ध हो रही है। इस अभिप्राय से लिखा अनेकासु श्रुतिषु यानी अनेक श्रुतियों में उपलभ्यमानत्वात् निर्गुण उपासनाया, ऐसा ऊपर से जोड़ देना, निर्गुण की उपासना अनेकों श्रुति वाक्यों में उपलब्ध हो रही है का मतलब श्रुति प्रमाण सिद्ध है, इसलिए अप्रामाणिक है ये नहीं कहा जा सकता निर्गुण उपासना को। अब 63वें श्लोक का उच्चारण कर ले, हाँ उसका अवतरण देख ले पहले। बहुश्रुतिषु दर्शनात् इति उक्तम अर्थम विवृणोति, ये कहा न 62वें श्लोक के चतुर्थ पाद में, बहुश्रुति सुदर्शनात् यानी निर्गुण उपासना अनेकों श्रुति प्रकरणों में देखी जा रही है, तो वे अनेक श्रुति प्रकरण कौन से हैं जहां पर निर्गुण की उपासना देखी जा रही है, उनमें से कुछ को बता रहे हैं, सबको बताना तो संभव नहीं है, चित्रदीप जितना बड़ा है उतना और एक खाली निर्गुण की उपासना बताने वाले श्रुति वाक्यों को ही रखेंगे तो एक प्रकरण बन जाएगा, कितने सारे वाक्य हैं निर्गुण की उपासना बताने वाले, इसलिए दो चार को बता करके आदि शब्द लिख देता है। इत्यादि में ये इन सब प्रकरणों में निर्गुण की उपासना बताई जा रही है। तो 63वें श्लोक का उच्चारण कर ले। उत्तरस्मिन् तापनीये सैव्य प्रश्नेथ काठके मांडुक्यादौ च सर्वत्र निर्गुणोपास्तिरीरिता। तो निर्गुण उपास्तिरीरिता इसका पदच्छेद कैसे होगा चौथे पाद का? कितने पद हैं? दो पद है मात्र, निर्गुणोपास्ति ही और ईरिता। पद संज्ञा किसकी होती है? हाँ, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत तिगंत शब्द स्वरूप की पद संज्ञा होती है ना। तो यहां निर्गुण शब्द सुबंत नहीं है, वो समास के अंदर आ गया। तो ये निर्गुणोपास्ति ये सुबंत है, प्रथमा का एक वचन है। भक्ति के तरह निर्गुणोपास्ति ये प्रथमा एक वचन है, सुबंत है। और ईरिता ये भी सुबंत है, रमा के तरह, रमा रमे रमा रमे रमा, ऐसे ईरिता ईरिते ईरिता ये बनेगा। तो निर्गुण उपास्ति ईरिता दो पद है। ईरिता शब्द का अर्थ है कथिता, उक्ता, प्रोक्ता। तो निर्गुण की उपासना बताई गई, ईरिता शब्द का अर्थ निकलेगा। कहां पर बताई गई है, कौन से उपनिषदों में? तो उत्तरस्मिन् तापनीये निर्गुणोपास्ति ईरिता, एक वाक्य बना लो। उत्तरस्मिन् तापनीये, ये उत्तरस्मिन् कौन सी विभक्ति है? हाँ, और तापनीये भी वही है, रामे की तरह। तो उत्तरीय उत्तर तापनीय उपनिषद है एक, उत्तर तापनीयोपनिषद। जैसे ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, जो आपके प्रसिद्ध दस उपनिषद हैं, इतनी ही तो नहीं है ना, एक ग्यारह एक जानते हैं आप, श्वेता श्वेतर उपनिषद। कहते हैं जितनी वेद की शाखाएं उतने से ज्यादा उपनिषदे होती है, एक शाखा में एक उपनिषद तो होती ही होती है, किसी किसी शाखा में दो दो तीन तीन भी होती है, तो ज्यादा ही हो जाएगी ना, जितनी शाखा है उतनी। तो वेदों की कितनी शाखाएं हैं? 1180। तो 1180 तो कम से कम उपनिषदे रहेगी, उन सब के नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं ना। उसमें से एक उत्तरीय उत्तर तापनीय उपनिषद भी है, समाधि लग रही है। तो उत्तर तापनीय उपनिषद और उसमें निर्गुण उपास्ति ईरिता, निर्गुण उपास्ति बताई गई है। तो एक उत्तर तापनीय उपनिषद ये प्रमाण हो गया ना, वो भी उपनिषद होने के कारण श्रुति है, वेद है, तो वेद प्रमाण से सिद्ध निर्गुण की उपासना हो गई। दूसरा, अभी प्रवचन किस उपनिषद पर चल रहा है, और पंचम प्रश्न तो पिछले वर्ष सुना था, उसमें क्या आया था? प्राण उपासना ही थी ना, सत्य काम सैवे का प्रश्न है, ओंकार उपासना, प्राण उपासना, उसमें परम पुरुष की उपासना बताई गई थी ना। वो परम पुरुष है निर्विशेष पुरुष, उसको उपास्य माना गया, जिसका वहां जाकर के ज्ञान होता है ब्रह्मलोक में। किसका ज्ञान होगा? यहां जिसका चिंतन आपने किया है उसी का वहां जाकर के ज्ञान होगा। ब्रह्मलोक को देखते हुए मुक्त होने की इच्छा से प्रेरित होकर के परम पुरुष का त्रिमात्र ओंकार में ध्यान करने वाला वो ब्रह्मलोक जाता है और वहां पर परम पुरुष का ज्ञान प्राप्त करता है। और मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्ति जब तक ब्रह्मा जी है तब तक जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, फिर ब्रह्मा जी के साथ विदेह मुक्ति को पाता है। ये कहा गया है प्रश्न उपनिषद के पांचवें प्रश्न में। सत्य काम सैव्य का वो प्रश्न है। तो ये बताया गया कि सैव्य प्रश्ने यानी प्रश्न उपनिषद के पांचवें प्रकरण में भी निर्गुण उपासना का वर्णन आया है, इसलिए वो प्रकरण भी निर्गुण की उपासना में प्रमाण बन जाएगा। तो उस ये पांचवा प्रश्न रूप प्रमाण से भी निर्गुण उपासना सिद्ध है, प्रामाणिक है। और अथ काठके, काठक कहते हैं कठोपनिषद को, कठ शाखा की उपनिषद काठक उपनिषद। और वो जो है उसमें नचिकेता के तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज जी ने कहा, नचिकेता ने निर्विशेष पुरुष को पूछा है ना यमराज जी से, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद् वद, ये पूछा। ये निर्विशेष ब्रह्म विषयक प्रश्न है। और उसको बताते हुए कहा, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति सर्वाणि तपांसी यद अभिवदन्ति, ऐसा आता है ब्रह्मचर्य का भी पालन सब जिसकी प्राप्ति के लिए करते हैं, वो इसी निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उसे मैं संक्षेप से बताऊंगा। और संक्षेप से बताते समय क्या बताया, ओम इत्येतत्, और ओम ये लक्षक है निर्विशेष का। तो ओंकार के रूप में बताया गया निर्विशेष की उपासना को कठोपनिषद में। तो इसलिए कहा काठके निर्गुण उपास्ति ईरिता, ऐसा अन्वय करिए। और मांडुक्यादौ च सर्वत्र निर्गुण उपास्ति ईरिता, मांडुक्य उपनिषद में भी जो अकार उकार मकार मात्रा का वाचार्थ है विश्व तेजस प्राज्ञ अध्यात्म में और अधिदैव में विराड हिरण्यगर्भ ईश्वर और अमात्र ओंकार का लक्ष्य जो है वो है तुरीय, वो है निर्विशेष, उसका चिंतन करने के लिए कहा गया। तो मांडुक्य उपनिषद भी बताती है निर्गुण की उपासना को, तुरिय का चिंतन जो करने के लिए वहां बताया गया वो है एक प्रकार से निर्गुण की उपासना। तुरिय तो निर्गुण है ना, निर्विशेष है ना, है? तो ये तो बताया गया पहले ही, अब आगे और भी आएगा उस समय बताएंगे। तो मांडुक्यादौ, तो मांडुक्य में भी बताया गया आदि शब्द से और भी प्रकरणों को लेना, एक एक प्रकरण बताएंगे तो कितने बताएंगे। तो सभी उपनिषदों में क्या हुआ कि निर्गुण उपासना को बताया गया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि निर्गुण उपासना अप्रामाणिक है, निर्गुण उपासना अप्रामाणिक नहीं है, प्रमाण सिद्ध है। और उस प्रमाण सिद्ध उपासना को की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, ये यहां पर कहा पूर्व श्लोक में, एक 62वें श्लोक में थोड़ी टीका है उसे देखिए। तो उत्तरस्मिन तापनीय का अर्थ करते हैं तापनीय उपनिषद, उपनिषदी तावत, तो तापनीय उपनिषद में कौन से वाक्य से निर्गुण उपासना बताई गई वो वाक्य बता रहा है कि देवा हवै प्रजापतिम अब्रुवन अनो प्रणियांसम इमम आत्मानम ओंकारम नो व्याचक्षस्व इत्यादिना बहुधा निर्गुण उपासनम अभिधीयते। तो प्रजापति के पास देवताओं ने निर्गुण उपासना बताने की प्रार्थना की। तो देवा हवे प्रजापतिम अब्रुवन, अब्रुवन का अर्थ है कहा, किसने कहा, देवा यानी देवताओं ने, किसको कहा, प्रजापतिम, प्रजापति को क्या कहा, तो कहते हैं अनो अनियांसम इमम आत्मानम ओंकारम नो व्याचक्षस्व। तो न यानी अस्मभ्यम, हमारे लिए, हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आप जो अणुओं से भी अति अणु, अनियांसम का अर्थ होता है अणु यानी सूक्ष्म पदार्थ, और उन सारे सूक्ष्म पदार्थों में जो सबसे सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसे कहा जाएगा अनियांस, अनियान, और द्वितीय का एक वचन है अनियांसम, उस अति सूक्ष्म वस्तु को। वो कौन है, इमम आत्मानम, वो है परमात्मा, वो है ओंकार का लक्ष्य, उसे आप हमें बताइए। इस वाक्य से निर्गुण उपासना की एक प्रकार से जिज्ञासा देवताओं ने की, और उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रजापति ने वो निर्गुण की उपासना का वर्णन किया। इत्यादिना बहुधा निर्गुण उपासनम अभिधीयते, किसमें, तापनी उपनिषद में, और सैव्य प्रश्ने प्रश्नोपनिषदि पंचमे प्रश्ने, सैव्य प्रश्न है प्रश्नोपनिषद के छह प्रश्नों में से पांचवा प्रश्न, और उसमें यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित इति, इस वाक्य से निर्विशेष की उपासना की जिज्ञासा हुई और उसका प्रतिपादन भी ओ आचार्य पिपला जी ने किया। इसलिए प्रश्नोपनिषद का पंचम प्रश्न भी और उसका उत्तर रूपाश्रुति प्रमाण हो जाएगी निर्गुण उपासना में। आगे कहते हैं कठोपनिषद के विषय में कि काठ के यानी कठवल्याम सर्वे वेदा यत् पदमामनंती इति उपक्रम्य एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म एतदालंबनं श्रेष्ठम इत्यादिना प्रणो उपासनम उच्यते। ये निर्गुण उपासना है, प्रणो का जो अमात्र प्रणो का अर्थ है वो निर्गुण ब्रह्म ही है, पूरी ब्रह्म ही है, उसका चिंतन रूप उपासना बताई गई है। और मांडुक्य उपनिषदी, मांडुक्य उपनिषद में भी ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम इत्यादिना अवस्थात्रयातीत तुरीय उपासनम एव अभिधीयते इत्यर्थ। तो अवस्थात्रयातीत जो तुरीय वस्तु है, अवस्थात्रय है जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और इनसे अतीत वो है तुरीय, वो है निर्विशेष परमात्मा, और उसी की उपासना मांडुक्य उपनिषद में भी बताई गई है। और मांडुक्यादौ यहां पर जो आदि शब्द है ना, उस आदि शब्द से तैतृय उपनिषद को, मुंडक उपनिषद को लीजिए। ये कहते हैं टीकाकार कि आदि शब्देन तैतृय मुंडकादयो गृह्यन्ते, मूल श्लोकस्थ आदि शब्द तो तैतृय उपनिषद मुंडक उपनिषद को बता रहा है, फिर यहां पर भी आदि शब्द जोड़ दिया, उसे और भी 1180 उपनिषदों में से जहां जहां निर्गुण की उपासना है उनको लीजिए इस आदि शब्द से। तो इस प्रकार अनेक प्रमाण से सिद्ध हुई ना निर्गुण की उपासना। अब निर्गुण की उपासना सदोष है, ये जो भ्रम था सगुण उपासक का वो भ्रम तो निकल गया प्रमाण सिद्ध होने से। अब कहते हैं सगुण की उपासना कैसी की जाती है वो तो हम जानते हैं, अब निर्गुण उपासना कैसी की जाएगी, तुरीय की उपासना कैसे होगी, ये पूछा जा रहा है। उसका प्रकार, वो प्रकार बताया जा रहा है कि ननु निर्गुण उपासनम कथम अनुष्ठेयम इत्यत आह, कि ननु यानी शंका है कि निर्गुण की उपासना का अनुष्ठान कैसे होगा, इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए 64वां श्लोक है। इसे देखिए, अनुष्ठान प्रकारो स्याह पंचीकरण ईरितः ज्ञान साधन में तच्चेन नेतिकेनात्र वारितम्। तो अस्या अनुष्ठान प्रकारः पंचीकरणे ईरितः, अस्याः यानी निर्गुण उपासनायाः, निर्गुण उपासना के अनुष्ठान का प्रकार, अस्या अनुष्ठान प्रकार, इतने का अर्थ निकलेगा निर्गुण उपासना के अनुष्ठान का प्रकार। कते ईरित यानी प्रोक्त कथित बताया गया है, कहां पर, तो पंचीकरणे, ये सप्तमी है, पंचीकरणे कौन सी संधि हुई, संधि कौन सी हुई, ये कोई है ना चिन्ह पंचीकरणे था, ये चो ये वायाव से अय आदेश होकर के फिर लोप शाकल्य से यकार का लोप हुआ, तो पंचीकरण ईरित ऐसा है ना, ये जो था ये की मात्रा उसमें अय आदेश होकर के यकार का लोप हो गया, नहीं तो आदगुण से गुण हो जाता ना, वो नहीं होगा यकार का लोप असिद्ध होने से। तो पंचीकरण में बताया गया, इसलिए पंचीकरण पढ़ करके वो प्रकार जानना निर्गुण की यानी तुरीय की उपासना कैसे होती है। पंचीकरण नहीं नहीं, शंकराचार्य जी ने एक पंचीकरण नाम का ग्रंथ लिखा है जिस पर हमारे महाराज श्री जी ने हिंदी व्याख्या की है, प्रणव बोध नाम से वो छपी भी है और उसको आप लोगों को हमने दी भी है। पहले लाभ पंचमी यहां पर जो अभी मनाई गई थी 2014 में, वो लेकर के आपके लाइब्रेरी में वैसी की वैसी रखी भी होगी। 14 में लाभ पंचमी जब मनाई गई थी तो उस प्रसाद के रूप में दिया गया था प्रणव बोध नाम का, पीला कवर वाला पुस्तक है छोटा सा, ऐसे तो मूल तो बहुत कम ही है, छोटा ही है, संस्कृत में है शंकराचार्य जी का, उसकी हिंदी व्याख्या है महाराज जी की। उसमें वो कैसे तुरीय की उपासना होती है वो विस्तार से बताया गया, उसे समझना। मांडुक्य में जैसा वर्णन है ना, अकार उकार मकार और अमात्र ओंकार और आत्मा के चार पाद, उसमें से चतुर्थ पाद का मात्र लक्ष्य करके उसे उसी का चिंतनमय के रूप में इसका विस्तार से वर्णन है, वो वहां समझा जा सकता है। उत्तरार्ध में कहते हैं, उत्तरार्ध का अवतरण है टीका में, इसका वो टीकास्थ अवतरण पहले देखिए। ननु एतद उपासनम ज्ञान साधनम एव, कहते हैं ये जो उपासना होगी ये तो ज्ञान का साधन है, पंचीकरण में बताई गई उपासना, न कि ज्ञान, ज्ञान का साधन है वो तुरीय का चिंतन। तो ननु एतद उपासनम ज्ञान साधनम एव, ज्ञान से लेना अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार जो समूल अध्यास का निवर्तक है, बाधक है, वो अनुभव ये ज्ञान है और उसका साधन है ये पंचीकरण में बताई गई निर्गुण की उपासना। ऐसा यदि कहते हैं तो विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं जिस अभिप्राय से, हाँ मुक्ति साधनम एव ए, तो न मुक्ति साधनम इति आशंक्य, यानी ये ज्ञान का साधन है न कि मुक्ति का साधन। और आप तो कह रहे हैं कि निर्गुण उपासना मुक्ति का साधन है, मुक्ति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, निर्गुण की उपासना करनी चाहिए। और यहां तो पंचीकरण में ज्ञान के साधन के रूप में ये तुरीय का चिंतन बताया गया है। हाँ हाँ, तो वो दोनों की भी होती है, निर्विशेष की भी होती है, सविशेष की भी होती है, दोनों की होती है। तो ये ज्ञान का साधन है न कि मुक्ति का साधन। मुक्ति का साधन तो ज्ञान है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान न मुक्ति नान्य पंथ विद्यते न। मुक्ति को छोड़ करके दूसरा कोई, मुक्ति का साधन ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। और ये निर्गुण उपासना मुक्ति का साधन तो नहीं है, इस प्रकार की आशंका यदि कोई करता है तो विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्म तत्व उपास्यापि मुच्यते इति वदताम अस्माकम् अनुकूलम इत्याह ज्ञान साधनम इति। तो हमने कहा है कि ब्रह्म तत्व उपास्यापि मुच्यते, ये विद्यारण्य स्वामी जी का पहले श्लोक गया है, इसी में आया है ब्रह्म तत्व उपास्यापि मुच्यते, पंचदशी का श्लोक है। तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करने से भी मुक्ति मिलती है ये कहा गया। तो ऐसा हम जो कहते हैं मुक्ति के साधन के रूप में निर्विशेष की उपासना को बताते हैं, वो हमारे अनुकूल ही ये बात है। कौन सी? कि निर्विशेष की उपासना ज्ञान का साधन है, ये जो आप कह रहे हो ये बात हमारे प्रतिकूल नहीं है, ये हमारे अनुकूल है। कैसे अनुकूल है? कहते हैं इस प्रकार अनुकूल है कि हम भी जब ये कहते हैं कि ब्रह्म तत्व उपास्यापि मुच्यते का अभिप्राय ये नहीं है कि ज्ञान निरपेक्ष बिना ज्ञान के ही खाली निर्गुण की उपासना मात्र से मुक्ति मिलेगी, ऐसा हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि जो निर्गुण उपासक है, प्रणव उपासक है, वह ब्रह्मलोक या तो यहां साक्षात्कार प्राप्त करेगा, सद्यो मुक्ति को पाएगा साक्षात्कार द्वारा, या ब्रह्मलोक जाएगा और वहां पर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होगा। ब्रह्म उपास्यापि मुच्यते का अर्थ है ब्रह्म उपासना साक्षात्कार करा करके मुक्त करती है। जैसे गीता में भगवान ने कहा न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, इसका ये व्यतिरिक्त मुख से कह रहे हैं कि कर्म का अनुष्ठान किए बिना नैष्कर्म्य शब्दित मोक्ष नहीं होता। इसको अन्वय मुख से कहना होगा तो क्या होगा कि कर्मानुष्ठान से ही मोक्ष होता है। कर्मानुष्ठान से मोक्ष होता है का मतलब कर्मानुष्ठान मोक्ष का साधन है, ये गीता बताएगी। तो कर्मानुष्ठान भी चित्त शुद्धि, वैराग्य, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य द्वारा वेदांत विचार का अधिकारी बनाती है, बनाता है, और फिर वेदांत विचार से साक्षात्कार होता है और बन जाता है, मुक्त हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ये भगवान कृष्ण का अभिप्राय है, न कर्मणा मनारंभत नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते का। ऐसे जब हम ये कहते हैं ब्रह्म तत्व उपास्त्यापि विमुच्यते, तो हमारा अभिप्राय ब्रह्म तत्व उपास्ति से साक्षात्कार प्राप्त करके साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष है, विपरीत भावना, वह ब्रह्म तत्व उपास्ति से दूर होगी। विपरीत भावना, और विपरीत भावना दूर होने पर ही मुक्ति का साधन ज्ञान होगा, साक्षात्कार होगा, उससे मुक्ति मिलेगी। ये हमारा अभिप्राय है ब्रह्म तत्व उपास्त्यापि मुच्यते का कहते समय, वो भी ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा ज्ञान का ही साधन है, ज्ञान द्वारा मुक्त कराती है। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म तत्व उपास्त्यापि मुच्यते इति वदताम अस्माकम अनुकूलम इति आह ज्ञान साधनम एतत् चेत। यदि ये कहो कि ये तो ज्ञान का साधन है, तो कहते हैं न इति केन अत्र वारितम, तो कहते हैं हम केन यानी किसने इस निर्गुण उपासना को ज्ञान का साधन नहीं है ये कह करके निराकरण किया। वारितम यानी निराकृतम, केन याक्षेपार्थ में होने से कोई भी इसका निराकरण नहीं करेगा, ये अर्थ निकलेगा। का मतलब ज्ञान द्वारा ही मुक्ति का साधन ये है। जैसे चित्त विक्षेप निवृत्ति द्वारा सगुण उपासना ज्ञान का साधन बनती है, चंचलता को दूर करके, विक्षेप दोष को दूर करके, ऐसे विपरीत भावना नाम का दोष दूर करके निर्गुण उपासना ज्ञान का ही साधन बनती है। निधिध्यासन, तो इस प्रकार ये 64वें श्लोक की चर्चा हुई, 65वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।